गर्भ संवाद, गर्भ ज्ञान, गर्भ संस्कार, ऐसे शब्द हम कई समय से सुनते आ रहे हैं और इससे जुड़े हुए कई सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर भी अवेलेबल है। कई सारे लोग अपने आप को गर्भ संस्कार कोच की तरह प्रेजेंट भी करते हैं। तो इस पावरफुल विधि से जुड़ी हुई एक बहुत ही सुंदर कहानी आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। हाय, दिस इज डॉक्टर सुधी, योर फ्रेंड, योर बडी। और आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी को सुनेंगे जिससे आपको द कॉन्सेप्ट ऑफ गर्भ संस्कार एंड गर्भ ज्ञान के बारे में समझने में बहुत आसानी होगी। तो ये जो कहानी है ये श्रीमद् भागवत पुराण से आई है। बहुत ही सुंदर ये एक विवरण है, एक कथा से जुड़ी हुई ये पूरी की पूरी कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। और श्रीमद् भागवत जो कि एक महापुराण है, कहा जाता है कि श्री वेद व्यास जी जो कि स्वयं नारायण के ही अवतार माने जाते हैं, जिनका जन्म ही प्रभु की लीला का वर्णन लिखने के लिए किया गया था या हुआ था, उनसे संबंधित श्रीमद् भागवत को लिखने वाले गोस्वामी श्री वेद व्यास जी हैं। और श्रीमद् भागवत जी को सबसे पहले किसने सुनाया था, तो ये कथा आती है शुकदेव जी के बारे में। अब शुकदेव जी कौन हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। शुकदेव जी श्री राधा रानी के वो प्रिय मिट्ठू हैं जो कि श्री राधा रानी के साथ गोलोक धाम में सेवा करते हैं। उनकी सेवा क्या होती थी, वो इतने प्रिय थे श्री राधा रानी के और श्री कृष्ण के कि शुकदेव जी जब भी राधा रानी के पास आते थे तो उनके हाथों पर बैठकर राधा रानी उन्हें अपने हाथों पर बिठाकर बड़े प्यार से अनार के दाने खिलाया करती थी और वो प्रेम से कृष्ण कृष्ण कहते थे। और जब वो ऐसा बोलते थे तो श्री राधा रानी के अंदर एक अलग ही प्रभाव, एक अलग ही खुशी आ जाती थी जब वो ये हरि सिमरन सुनती थी उनके मुंह से, शुकदेव जी के मुंह से। ऐसे ही जब शुकदेव जी श्री कृष्ण के पास पहुंचते थे तो श्री कृष्ण भी अपने हाथों पर ही उन्हें बिठाकर बड़े प्रेम से अनार के दाने खिलाते थे। और तब वे कहते थे राधा राधा। और जब श्री शुकदेव जी अपने मुख से राधा जी का गुणगान करते थे, राधा जी का नाम लेते थे, तो वो श्री कृष्ण के लिए अमृत समान होता था। सो श्री कृष्ण और श्री राधा जी के अति प्रिय शुकदेव जी नित्य निकुंज में वास करते थे। अब शुकदेव जी की क्या सेवा थी, शुकदेव जी का काम होता था कि जब ब्रह्म मुहूर्त में जो प्रभु को उठाने की सेवा होती है तो ब्रह्म मुहूर्त में शुकदेव जी बड़े सुंदर राग भैरव गाके श्री राधा रानी जी को और श्री कृष्ण जी को उठाया करते थे। तो श्री शुकदेव जी का मुख्य जो सेवा थी वो थी उनको प्रभु को, श्री राधे कृष्ण को सुबह सुबह प्यारे प्यारे राग गाकर जगाना और उन्हें बड़े प्रेम से सुबह की लीला के लिए जागृत करना। तो एक बार की बात है, क्या हुआ, शुकदेव जी बड़े प्यार से बैठकर राधा जी और श्री कृष्ण जी के पास खेल रहे थे, उनके चरणों में बैठ करके वो खेल रहे थे। अब सुखदेव जी क्या देखते हैं, उनकी दृष्टि पड़ती है श्री कृष्ण जी के मुख पर। तो वो क्या देखते हैं, वो देखते हैं कि श्री कृष्ण के मुख पर एक उदासी सी है, और इस उदासी को देखकर सुखदेव जी परेशान हो जाते हैं। वे श्री राधा रानी से पूछते हैं कि आज हमारे प्रभु के मुख पे ये उदासी कैसी है? तो राधा रानी भी देखती हैं और उन्हें भी लगता है कि भाई आज जो प्रभु हैं उनके मुख पर थोड़ी उदासी सी है, और श्री प्रभु के श्री मुख पर ये जो उदासी है इससे पूरे वातावरण में भी एक अजीब सी उदासी है। ये देखकर श्री राधा जी सुखदेव जी की बातें सुनकर प्रभु से पूछती है कि प्रभु क्या बात है, आप इतने उदास क्यों दिख रहे हैं आज? तो श्री हरि कहते हैं कि मैं ये सोचकर दुखी हूं कि कलयुग बहुत निकट है, कलयुग आने जा रहा है, और कलयुग में जो जीव होंगे कलयुग के प्रभावों में होंगे, और कलयुग के प्रभावों में होने की वजह से उनकी आयु भी कम होगी, उनकी बुद्धि भी कम होगी, वो इतने भाग्यशाली भी नहीं होंगे, और तरह तरह के दुखों से परेशान रहेंगे। ये कलयुग के लोगों के लिए सोचकर मुझे दुख हो रहा है। तो सुखदेव जी राधा जी बोलते हैं कि प्रभु आप तो सर्वज्ञाता हैं, आप तो सब करते हैं, आप तो सभी के परम पिता हैं, तो आपको ये भी पता होगा कि यदि कलयुग अपना प्रभाव दिखाएगा और कलयुग के अंदर जो सभी जीव हैं, जो सभी मनुष्य हैं, वो तरह तरह के दुखों को भोगेंगे अपने अल्प बुद्धि, मंद बुद्धि, अल्प आयु और अल्प भाग्य की वजह से, तो इसका कुछ ना कुछ तो जरूर निराकरण होगा। आप तो माँ प्रभु हैं, आप तो स्वयं परमेश्वर हैं, तो इसका क्या उपाय है ये तो आप जरूर जानते होंगे। तो प्रभु बोलते हैं उपाय तो है, अब उपाय क्या है? तो प्रभु ये बोलते हैं कि यदि कोई मेरे और श्री राधा रानी के हमारे लीलाओं का जो गुणगान मधुर वाणी में और मधुर कथा के रूप में कलयुग के मनुष्यों तक पहुंच जाए, तो इससे कलयुग के मनुष्यों का उद्धार संभव है। अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसा कौन है जो ये कर सकता है कि भाई कलयुग के लोगों के पास प्रभु के कीर्तन को, प्रभु की कथा को बहुत ही सुंदर स्वरूप में, बहुत ही सुंदर गायन के साथ, वादन के साथ कलयुग के मनुष्यों तक पहुंचाए, और जो जानता भी हो कि प्रभु की क्या लीला है, इसके लिए कौन पात्र है? और अगर जो पात्र है उसे भेज देना चाहिए ताकि वो इस कृत्य को कर सके और इस कार्य के संपूर्ण होने से कलयुग के मनुष्यों का, कलयुग के जीवों का भी उद्धार हो सके। तो सुखदेव जी बड़े प्रेम से बोलते हैं कि प्रभु जब इस बात का पूरा उपाय हल यही है, तो ऐसे जो भी हैं, जो भी पात्र हैं, जो पात्रता रखते हैं प्रभु के गुणगान, सुंदर गुणगान कलयुग के जीवों तक पहुंचा सके, उन्हें भेज दीजिए। बिना किसी तरह के का विलंब किए जो भी है उन्हें भेज दीजिए। अब प्रभु के मुख पे बड़ी प्यारी सी, बड़ी प्रिय सी मुख पर हंसी आती है और राधा जी भी उनको देख करके मुस्कुराती हैं। तो शुभदेव जी पूछते हैं कि भाई आप मुस्कुरा रहे हैं, ऐसा कौन है जो ये महान काम कर सकता है कि आपकी लीलाओं का सुंदर गुणगान कलयुग के मनुष्यों तक, जीवों तक पहुंचा सकता है। तो श्री हरि श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रिय शुभदेव, इस कार्य को करने के लिए आपसे ज्यादा अधिक पात्रता कोई नहीं रखता। अब ये सुनकर क्या हुआ, ये सुनकर शुभदेव जी अचंभित हो गए, घबरा गए और दुखी हो गए। भला क्यों? तो शुभदेव जी ने सुनते ही बोला कि प्रभु मुझसे क्या गलती हो गई, मुझसे क्या ऐसी भूल हो गई जो आप मुझे अपने आप से दूर करना चाहते हैं। तो श्री हरि बोले कि शुभदेव जी, आपसे ज्यादा मधुर कोई नहीं और आपसे ज्यादा हमें इस नित्य निकुंज में जानने वाला भी कोई नहीं जो हमारे इतने नजदीक रहता है, जो हर पल हमारे साथ रहता है, हमारी सारी लीलाओं का एक पात्र है, हमारी सारी लीलाओं का दृष्टा है, साक्षी है। तो आपसे उत्तम, आपसे ज्यादा पात्र तो इस महान कृत्य के लिए कोई भी नहीं है। तो इस तरह से शुभदेव जी को ये कार्य सौंपा जाता है कि उन्हें प्रभु की लीला कलयुग के लोगों तक पहुंचानी है और उन्हें भेज दिया जाता है। अब क्या होता है, दूसरी तरफ हम चलते हैं जहां पर नारद जी कैलाश में माता पार्वती के पास जाते हैं। जिस वक्त हमारे भोले बाबा अपनी समाधि में लीन हैं, अब नारद जी को स्वागत करते हुए माता पार्वती पूछती हैं कि स्वामी तो अभी से समाधि में है। तो नारद जी कहते हैं, जी माता, और उनसे पूछते हैं नारद जी पार्वती माता से कि माँ, क्या आपने कभी देखा है कि महादेव अपने कंठ में, अपने गले में ये मुंड माल पहनते हैं, ये मुंड माल धारण करते हैं, ये किनके मुंड हैं, ये किनके सर हैं, सर की कटी हुई कटे हुए सरों से बनी हुई माला को मुंड माला कहा जाता है। तो श्री नारद जी बोलते हैं माता पार्वती से कि ये किनकी मुंड माला है, क्या आप जानती हैं? तो पार्वती माता कहती है कि नहीं, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। तो नारद जी कहते हैं कि यदि ऐसा है माता, तो आप अवश्य ही महादेव से, जब वे अपनी समाधि से बाहर आते हैं, तो उनसे जरूर ये प्रश्न करिएगा, ये पूछिएगा कि आखिर ये मुंडमाल कहाँ और किनकी है और क्यों है। ये बोलकर नारद जी प्रणाम करते हुए, नारायण नारायण करते हुए प्रस्थान कर जाते हैं। और जैसा कि उन्होंने कहा और प्रश्न और एक जिज्ञासा माता पार्वती के मन में डाली, तो अब माता पार्वती भी बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासु होकर, बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस होकर, जब महादेव अपनी समाधि से उठते हैं तो प्रश्न करती हैं। क्या प्रश्न करती हैं कि महादेव, ये मुंडमाल जो आप धारण करते हैं, ये मुंडमाल किनकी है, ये कौन है जिनके सर, कटे हुए सरों की माला आपने अपने गले में धारण कर रखी है? तो माता पार्वती का ये प्रश्न सुनकर, ये क्यूरोसिटी देखकर महादेव एक मंद मुस्कान लिए हुए कहते हैं कि देवी, ये मुंडमाल किसकी है आप ये जानना चाहती हैं? तो माता कहती हैं, हाँ, जी स्वामी, मैं यही जानना चाहती हूँ कि आखिर ये किनकी मुंडमाल है जो आपने इतने प्रेम से अपने गले में धारण कर रखी है। तो महादेव कहते हैं कि देवी, ये सभी मुंड आप ही के हैं। अब ये सुनकर माता पार्वती अचंभित हो जाती हैं और क्या करती हैं, वे फिर पूछती हैं कि प्रभु, मेरे मुंडमाल, मेरे मुंड? तो महादेव कहते हैं कि हाँ देवी, आपने इस कालचक्र में कई बार जन्म लिए और अपनी देह को त्यागा, और जब जब आपका जन्म हुआ और आपने अपनी देह को त्यागा, तो मैंने आप ही के मुंडों को अपने बिल्कुल करीब रखते हुए उनकी ये माला अपने कंठ में विराजी है। तो देवी कहती है कि प्रभु, आप तो सदैव हैं, आप तो अमर हैं, आपने कभी भी इस कालचक्र का हिस्सा नहीं है, तो मैं इतने सारे जन्म और मरण और इतनी सारी जीवन जी चुकी हूं, ऐसा क्यों? तो प्रभु कहते हैं कि ऐसा इसीलिए देवी कि मैंने उस अमर तत्व को जाना है जो अभी आप नहीं जानती। ये सुनकर क्या हुआ, ये सुनकर माता पार्वती और ज्यादा अचंभित हुई, उनमें और ज्यादा जिज्ञासा आई और उन्हें लगा कि, उन्होंने पूछा महादेव से कि प्रभु, जिस अमर तत्व को आप जानते हैं, मैं भी उस अमर तत्व को जानना चाहती हूं, मैं भी उस रहस्य को जानना चाहती हूं जिससे आप स्वयं परमेश्वर प्रभु हैं और इस जीवन मरण के और इस काल चक्र से बिल्कुल परे हैं। तो भोलेनाथ कहते हैं कि देवी, इस अमर रहस्य को, इस अमर तत्व को जानने की पात्रता तभी होती है जब आप पूरी तरह से तैयार हैं, और अब चूंकि आप जिज्ञासु हैं, उस अमर तत्व को जानने के लिए आप तैयार हैं, तो मैं आपको वो अमर तत्व जरूर बताऊंगा। ऐसा कहकर भोलेनाथ माता पार्वती को हिमालय की और ऊंची ऊंचाइयों पर ले जाते हैं, और रास्ते में भोलेनाथ अपनी कंठमाल सर्प को, अपने त्रिशूल को, डमरू को, चंद्रमा को जिन्हें उन्होंने सर पे धारण करा हुआ है, गंगा को, हर किसी को त्यागते हुए एक बहुत ही सुंदर गुफा में पहुंचते हैं माता पार्वती और महादेव। अब क्या होता है, तो उस जगह पर जहां सिर्फ माता पार्वती और भोलेनाथ हैं, उस सुंदर सी गुफा में भोलेनाथ आदेश देते हैं उस गुफा में मौजूद सभी जीव जंतुओं को कि यहां जो भी पशु पक्षी जीव जंतु मौजूद हैं, वो यहां से चले जाएं। मैं एकांत में, मैं और देवी पार्वती एकांत में यहां कुछ समय वास करेंगे, तो आप सभी यहां से बाहर चले जाएं। अब क्या होता है, प्रभु के आदेश अनुसार सभी जीव जंतु उस गुफा से बाहर चले जाते हैं। वहां एक तोता और मैना का जोड़ा रहता था उस गुफा के अंदर, तो वो तोता मैना का जोड़ा जो है वो भी बाहर चला जाता है। इस सुंदर मनोरम गुफा को आज हम अमरनाथ धाम के नाम से जानते हैं, जहां भोलेनाथ ने, शिव शंभु ने माता पार्वती को अमर तत्व दिया था या अमर तत्व का ज्ञान दिया था। अब होता ये है कि प्रभु माता पार्वती से कहते हैं महादेव कि मैं अपने आराध्य का ध्यान करते हुए इस पूरे अमर तत्व को आपको सुनाऊंगा देवी, और मैं अपने नेत्रों को बंद कर लूंगा। अब ये किस अमर तत्व की बात हो रही है, ये उसी भगवत पुराण की बात हो रही है जिसके बारे में कहा गया था, जिसके लिए कहा गया था कि वही एक तत्व है जो कि कलयुग में सभी जीवों की मुक्ति का एकमात्र साधन है, श्रीमद् भागवत पुराण। तो भोलेनाथ कहते हैं कि देवी, जब मैं इस पुराण, इस तत्व को, इस रहस्य को आपके साथ साझा करूंगा, आपको सुनाऊंगा, तो मैं ध्यान लीन होकर के और उस तत्व को अपने आराध्य का ध्यान करते हुए आपको कहूंगा। मेरे नेत्र बंद रहेंगे, पर जब मैं आपको सुनाऊंगा तो आपको, आप सुन रही हैं ये बताने के लिए मुझे हर बार हम करके बताना होगा, जिससे मैं ये जानता रहूंगा कि आप सुन रही हैं, क्योंकि मेरे नेत्र जो हैं वो बंद रहेंगे। अब क्या होता है, भोलेनाथ अपने स्थान पर, देवी अपने स्थान पर विराजित होकर कथा आरंभ करते हैं, उस रहस्य को भजना शुरू करते हैं। तो एक जो तोता मैना, मैंने कहा वो तोता मैना तो बाहर चले गए थे, लेकिन उनके घोंसले में एक अंडा था। अब वो जो अंडा था वो तोता और मैना का था। अब भोलेनाथ जब कथा कहते हैं तो देवी करते हुए उनको एक्नॉलेज करती है, उनको बताती है कि हाँ वो सुन रही हैं। दोनों बड़े प्रेम और आनंद से कथा का स्मरण और श्रुति करते हैं। लेकिन देवी कथा के नवे स्कंद को सुनने के बाद माता पार्वती की लग जाती है नींद। अब नींद लग जाती है तो इतने में पीछे से क्या हो रहा था, कथा के वाइब्रेशन से, कथा के वाचन से, जब स्वयं महादेव उस कथा का, उस अमृत तत्व का भजन कर रहे थे, तो उस समय उसकी ऊष्मा से, उसकी गर्मी से जो वो अंडा था तोता और मैना का, वो उसमें से एक पक्षी जन्म ले लेता है। और वो पक्षी और कोई नहीं, वो स्वयं कौन है, सुखदेव जी महाराज हैं, क्योंकि ये सारी की सारी लीला स्वयं श्री हरि की है। तो अब सुखदेव जी का जन्म हो गया है, जन्म हो गया है, तो वे बड़े प्रेम से उस अमर तत्व को सुन रहे हैं, श्रीमद् भागवत पुराण को सुन रहे हैं और देख रहे हैं कि कितनी सुंदर यहाँ लीला हो रही, कितना सुंदर दृश्य है कि स्वयं महादेव, स्वयं आदि गुरु और आदि शक्ति यहाँ श्री हरि का, उस अमर तत्व का गुणगान कर रहे हैं। तो जब महादेव कथा सुना रहे हैं और माता पार्वती की नींद लग गई है, ऐसा देख करके सुखदेव जी महाराज सोचते हैं कि अगर हंकार नहीं हुई तो महादेव का ध्यान भंग हो जाएगा। तो वे क्या करते हैं कि वो माता तो सो गई हैं, लेकिन सुखदेव जी महाराज बीच बीच में करते रहते हैं। अब कथा पूरी हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। इस बीच देवी भी उठ जाती है, माता पार्वती। तो वे क्या कहती हैं भोलेनाथ से कि प्रभु, अच्छा तो हम वहां थे, अब इसके आगे क्या हुआ। तो भोलेनाथ कहते हैं कि मैंने तो पूरा पूर्ण ज्ञान, पूर्ण रहस्य भज दिया है, बता दिया है। तो माता के ऐसे शब्द सुनकर कि वे बीच में सो गई थी, भोलेनाथ अचंभित हो जाते हैं। क्यों अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि जब माता सो रही थी तो बीच में हूंकार कौन कर रहा था। ये सोचकर भोलेनाथ क्रुद्ध हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं और बोलते हैं यहाँ कौन और है इस गुफा में उपस्थित। अब सुखदेव जी समझ जाते हैं कि भोलेनाथ को गुस्सा आ गया है और वो ना दाएं देखते हैं ना बाएं, सीधा उड़ते हैं और भागते हैं, और भोलेनाथ उनके पीछे पीछे भागते हैं।
ऐसे ही चलता रहता है, सुखदेव जी आगे उड़ रहे हैं, भोलेनाथ उनके पीछे पीछे, क्योंकि भोलेनाथ गुस्सा में है, गुस्से में है कि भाई मेरी अनुमति के बगैर यहाँ कौन उपस्थित था और उसने ऐसी क्यों दुष्टता की कि वो मेरे आदेश को नहीं माना और बिना अनुमति के। कहा जाता है कि जो ज्ञान होता है वो बहुत वैल्यूएबल होता है, मूल्यवान होता है, और गुरु भी आपको जब तक एक्सेप्ट ना करे तब तक आप शिष्य नहीं बन सकते। तो यही बात थी कि जब गुरु तैयार नहीं है आपको ज्ञान देने के लिए या किसी को भी ज्ञान देने के लिए, तो फिर शिष्य अगर या चोरी से अगर आप कोई ज्ञान ले रहे हैं तो वो ठीक बात नहीं होती है। यही सोचकर भोलेनाथ गुस्सा थे और यही सोचकर श्री सुखदेव जी दौड़ रहे थे, उड़ रहे थे, बचना चाह रहे थे। अब उड़ते उड़ते सुखदेव जी उड़ते उड़ते कहाँ पहुँचते हैं? सुखदेव जी पहुँचते हैं और ऊपर, उस जगह पर जहाँ पर गोसाई वेद व्यास जी, स्वामी वेद व्यास जी का स्थान है, आश्रम है। और वहाँ पर क्या हो रहा है? वहाँ पर ये हो रहा है कि वहाँ जो वेद व्यास जी की स्वामिनी है, जो उनकी धर्म पत्नी है, वो आंगन की सफाई करते हुए अभी उठ करके आई हैं और वो दिनचर्या में अभी शुरुआत ही कर रही हैं और वो उबासी ले रही हैं। What you say is yawning. तो वो उबासी लेते हुए जैसे मुंह खुलता है तो उनका मुंह खुलता है और उसी क्षण जो सुखदेव जी हैं वो माता के मुंह के अंदर चले जाते हैं, वो बंद हो जाता है। अब भोलेनाथ पहुंचते हैं वेदव्यास जी के घर पर, उनके आश्रम, उनकी कुटिया पर, और पूछते हैं वो कहाँ हैं। तो वेदव्यास जी बोलते हैं, प्रभु क्या बात हो गई? भोलेनाथ सारा विवरण देते हैं कि भाई ऐसी बात हो गई और वो पक्षी, वो जो शुक है, वो जो तोता है, वो उड़ के यहीं आया है। तो वेद व्यास जी भोलेनाथ को देखकर हंसने लग जाते हैं। अब भला वो क्यों हंसने लग जाते हैं? वो भोलेनाथ से कहते हैं, भोलेनाथ आप भोले के भोले ही रह गए। जरा सोचिए कि आपसे तेज कौन उड़ सकता है या भाग सकता है? क्या वो कोई साधारण जीव होगा? और दूसरी चीज, आप इस ज्ञान को जो सुन लेता है वो तो अमर हो जाता है, तो आप उस पक्षी के पीछे उड़ रहे हैं, उस तोते के पीछे उड़ रहे हैं उसे दंड देने के लिए, लेकिन आप उसे दंड दे ही नहीं सकते क्योंकि अब तो वो अमर तत्व को जान चुका है। तो आप तो भोले भंडारी हैं, आप नहीं समझ पाए। अब भोलेनाथ तत्क्षण शांत हो जाते हैं और सोचते हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है कि इस ज्ञान को प्राप्त करने वाला तो अमर हो जाता है, और भला मुझसे तेज उड़ने वाला जीव कोई साधारण जीव तो बिल्कुल नहीं है। तो वे ध्यान करते हैं और ध्यान में जाते ही उनको पूरी की पूरी बात समझ में आ जाती है कि ये जो हैं, ये नित्य निकुंज से आए हुए श्री राधा रानी और श्री कृष्ण जी के प्रिय शुक, वही प्यारे शुक हैं, वही प्यारे तोताराम हैं, वही प्यारे तोते हैं जो इस लीला को पूर्ण करने आए हैं, कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए, इस भगवत रहस्य को जन कल्याण के लिए भाचने के लिए इस धरती लोक पर लीला करने के लिए आए हैं। और उन्हें बिल्कुल उसी समय सारी बात समझ में आ जाती है और वे हाथ जोड़ करके अपने आराध्य श्री नारायण को हाथ जोड़ते हुए सारी बात समझ के वहां से प्रस्थान कर लेते हैं। तो अब आगे क्या होता है? माता वेद व्यास जी की धर्म पत्नी, जिनके मुख में श्री सुखदेव जी जा चुके हैं और अंदर विराज चुके हैं, उनका क्या हुआ? तो यहाँ से शुरू होती है ये पूरी की पूरी घटनाक्रम। मैं अभी तक आप ये समझ चुके होंगे कि हर एक जीव जब अपने अंडकोश में भी होता है, जब वो अपने गर्भ में भी होता है, किसी जीव का यदि वो अंडा भी है या किसी मनुष्य के गर्भ में भी है, तो वो जीव पूर्ण तरह से चेतन होता है, वो पूर्ण तरह से हर चीज़ को महसूस करता है, सुनता है, समझता है, जागृत होता है। तो अब आगे क्या हुआ हम इसी कथा में देखते हैं। आगे ये होता है कि ये पूरी की पूरी लीला श्री राधा रानी श्री परम प्रिय कृष्ण जी की लीला है, मनुष्यों के उद्धार के लिए, कलयुगी मनुष्यों के उद्धार के लिए। तो वेद व्यास जी की जो ड्यूटी थी, जन्म की ड्यूटी है थी उस समय, वो थी कि पूर्ण ज्ञान को लिखा जाए। और सुखदेव जी जो उनके जो जिन्हें ये आज्ञा मिली थी कि वो गायन करेंगे, तो उनकी ये ड्यूटी दी गई थी, उनको ये कार्य दिया गया था कि वो भगवत श्रीमद् भगवत का ज्ञान का प्रसार करेंगे। अब समय आने पर श्री वेद व्यास जी की जो धर्म पत्नी है वो गर्भवती होती है, और उनके गर्भ में होते हैं सुखदेव जी। वही सुखदेव जी का अब आने का समय निर्धारित हो जाता है, उन्हें माता के वेद व्यास जी की स्वामिनी जी के गर्भ से उत्पन्न होना होता है। लेकिन अब गर्भ ठहरता है, आमतौर पर गर्भ की सीमा जो होती है, समय जो होता है, वो 9 महीने का होता है, प्रेगनेंसी जेस्टेशनल पीरियड। लेकिन यहाँ पर चूंकि ये स्पेशल केस है, तो यहाँ पर क्या होता है कि सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि मैं तो बाहर नहीं आऊँगा, मुझे तो जन्म नहीं लेना। भाई क्यों नहीं लेना? क्योंकि मैं बाहर आऊँगा तो वही मोह माया में पड़ जाऊँगा, और मुझे मेरे प्रभु से दूर नहीं होना है। तो सुखदेव जी, बताया जाता है ये उनके बारे में बात है कि वे अपनी माता के गर्भ से लगभग 12 वर्षों तक उनके गर्भ में रहे थे, उन्होंने जन्म नहीं लिया था। जरा सोचिए, और क्यों नहीं लिया था? क्योंकि वे ये सोचते थे कि जैसे ही वो इस जन्म लेंगे धरती पर, तो वो माया, प्रभु की माया में लीन हो जाएंगे, या माया के वशीभूत होकर के प्रभु से दूर हो जाएंगे। तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। तो देवी 12 साल तक अपने गर्भ को लेकर के, एक औरत के लिए बहुत ही बड़ा ये तपस्या रहती है पूरे 9 महीने की, जब तक गर्भ में शिशु बन रहा होता है। पर यहाँ तो बात और ही स्पेशल है, और ही खास है, क्योंकि सुखदेव जी तो बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। 9 नहीं 12 महीने हो गए, 12 नहीं 24 महीने हो गए, और ना जाने कितने ही साल निकल गए, 12 साल निकल गए। 12 साल तक गर्भ को सहन करना, धन्य वो देवी और धन्य ये लीला। बोलिए श्री हरि की जय। तो ये लीला सुखदेव जी की कि वो आने से मना कर देते। अब माता कहती हैं कि वेद व्यास जी से कहती है कि भाई कुछ करिए, आप अपनी तपस्या के बल से, अपने ज्ञान के बल से, आप स्वयं प्रभु के प्रभु पात्र हैं, प्रभु हैं, तो आप मेरी, मुझे इस पीड़ा से मुक्त दिलाइए, मुक्ति दिलाइए, मैं अब थक गई हूँ। तो वे माता के गर्भ में मौजूद सुखदेव जी से वेद व्यास जी कहते हैं कि बेटा अब बाहर आ जाओ, अब आपका समय आ गया है, आपको आपकी ड्यूटीज पूरी करनी है। तो सुखदेव जी मना कर देते, नहीं हम तो नहीं आएंगे भाई। अब सुखदेव जी के इस ऐसी बात करने पर वेद व्यास जी और सोच में पड़ जाते कि भाई अब क्या किया जाए। वे नारद जी को बुलाते हैं, नारद जी जो फिर ब्रह्मा जी के पुत्र, और वो भी नारायण के ही रूप मात्र हैं। तो स्वयं नारद जी आते हैं, वो कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज बाहर आ जाइए, जन्म ले लीजिए, अब धरती पे अवतरित हो जाइए, आप किसी तरह की माया में नहीं लिप्त होंगे, नहीं फंसेंगे। तो सुखदेव जी कहते हैं कि प्रभु आप तो रहने दीजिए, क्योंकि आप भी फंस चुके हैं एक बार प्रभु की माया में, तो आप तो मत ही कहिए मुझे कि मैं नहीं फंसूंगा, मैं तो नहीं आ रहा। तो सब बड़े परेशान, वेद व्यास जी परेशान, माता जी परेशान, नारद जी की बात नहीं मानी उन्होंने, तो सुखदेव जी कहते हैं कि मैं तो नहीं मानूंगा जब तक स्वयं नारायण आकर के ना बोल दें कि आप, मैं इस लीला, मैं इस माया में नहीं लिप्त होऊंगा, तब तक तो मैं ना आ रहा। अब ये सुनकर हुआ क्या, तो हुआ वही जो कि होना था। स्वयं नारायण आए और उन्होंने सुखदेव जी से कहा कि भाई सुखदेव जी आप आ जाइए, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आप किसी तरह के की माया में लिप्त नहीं होंगे और आप मुझसे कहीं दूर नहीं जाएंगे। जब उन्हें ये आश्वासन और ये प्रॉमिस भगवान स्वयं देते हैं सुखदेव जी को, तब जा करके सुखदेव जी का जन्म होता है। सो राधे राधे, इस तरह से हम देखते हैं कि सुखदेव जी महाराज धरती पर जन्म लेते हैं। अब जब जन्म ले लेते हैं तो इसके बाद भी बहुत सारी लीला है और बहुत सारी चीज़ें हैं कि कैसे उन्होंने भागवत गाथा गाई। ये बहुत ही सुंदर कथा है और हमने इस कथा के अंदर जो सुखदेव जी महाराज की कथा हमने सुनी, इसके अंदर हमने समझा कि कैसे गर्भ ज्ञान एक बहुत ही पावरफुल टेक्नोलॉजी है, एक पावरफुल मीडियम है जिससे कि गर्भस्थ शिशु, गर्भस्थ चेतना के अंदर वो सारी गुण, वो सारे ज्ञान, वो सारे सारे के सारे फीचर्स आप इंस्टॉल करते हैं। सो इट्स अ वेरी पावरफुल टेक्निक जिसे आपको लाइटली नहीं लेना चाहिए। दूसरी चीज़, आपके जब भी आप कंसीव करते हैं और आप 9 महीने तक और इवन जो प्री प्रेगनेंसी प्रिपरेशन है, इसके ऊपर डेफिनेटली मैं और पॉडकास्ट में आपके साथ और सारी चीज़ें शेयर करूँगी, बट दीज फिफ्टीन मंथ्स आई कंसिडर कि करीब 3 महीने प्रेगनेंसी के पहले के, 9 महीने प्रेगनेंसी के, यानी 12 महीने ये हो गए और 3 महीने बच्चे के जन्म के बाद के, लगभग ये बहुत ही ज़्यादा खास होते हैं जब उस जीव की चेतना में आप बहुत गहरे रहस्य और बहुत गहरी क्वालिटीज़ डालते हैं। सो विद दिस, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। ज़रूर अपने परिवारजनों के साथ इस प्यारी सी कथा को, इस प्यारी सी नरेशन को शेयर करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये कथा कैसी लगी और आप कैसे और चीज़ों को सुनना चाहेंगे। सो विद दिस थैंक यू सो मच एंड थैंक यू अगेन फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। दिस इज़ डॉक्टर सुधी।